मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 23 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है पवन यादव, आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। तो पवन आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक बात मैं अपने सभी उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और मानसिक रूप से भोपाल आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं जानबूझकर कह रहा हूं भोपाल आने की तैयारी में जुटे हुए हैं मानसिक रूप से। देखिए ये बहुत जरूरी होती है, ये तैयारी बहुत जरूरी होती है। मित्रों मुझे मालूम है कि जैसे जैसे आने के दिन नजदीक आते चले जाएंगे आपके मन में एक अलग किस्म की बेचैनी पैदा होने लगेगी और आपका दिमाग कुछ ऐसे उपायों की तलाश करने लगेगा कि यार भोपाल जाना न पड़े, भोपाल जाना न पड़े। कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, ढेर सारे तर्क आपके दिमाग में आएंगे। यूं कह लीजिए कि आप सिविल सर्वेंट अगर बनना चाहते हैं तो यह आपकी सबसे पहली मानसिक परीक्षा है। मानसिक परीक्षा कि कैसे आपके सपोर्ट में जो आप तर्क लेकर के आ रहे हैं अपने ही सपोर्ट में, कैसे आप उन तर्कों को खारिज करके और अंततः अपने इस निर्णय पर टिके रहते हैं कि नहीं मुझे जाना ही है। अक्सर हम जब समय आता है तो सरेंडर करने की मुद्रा में आ जाते हैं। मित्रों मैं चाहूंगा कि आप सब इस तरह के तर्कों की अगर तलाश कर रहे हो तो कोशिश करें कि दिमाग उधर जाने न पाए और हमेशा इस दृढ़ता और विश्वास पर टिके रहें कि नहीं हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। 15 ही दिनों का सवाल है, हमें जाना है। मैंने निर्णय लिया है कि हमें वहां मुझे जाना है तो मैं ही वहां जाऊंगा और मैं जाकर रहूंगा। आने के बाद ही आपको यह पता लग पाएगा कि आपका यह निर्णय कितना अधिक सही था। मित्रों टालने के लिए तो हम किसी भी चीज को टाल सकते हैं, टालते ही रहते हैं, लेकिन किसी चीज को पकड़ लेना मुझे लगता है कि अपने विकास का और अपनी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। तो मैं अपने सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स से आज पहली बात जो कहने जा रहा हूं और जो मैं कह भी चुका हूं वो ये कि प्लीज मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। राइट फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे एंजल टैक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को हम लोग देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि 15वां भारतीय प्रवासी दिवस शुरू हो गया है। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है उसके तहत ये आता है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस पर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। फिलहाल मैं इतना जरूर आपको फिर से सतर्क करना चाहूंगा कि इस पर अगर आपको कुछ पढ़ने को सुनने को मिलता है तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जनरली स्टूडेंट ऐसे घटनाओं को सामान्यतः इग्नोर कर देते हैं। और सच पूछे तो मेरे डेली ऑडियो लेक्चर की जो उपयोगिता आपके लिए हो सकती है वो यही कि आप ये जान सकें कि नहीं कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों न्यूज में तो सच पूछे तो यही एक घटना थी, लेकिन मैं आपको न्यूज़पेपर्स की कुछ और खबरें बताने जा रहा हूं और उसका जो रीडिंग मटेरियल है मैं आज आपको प्रोवाइड भी करूंगा। जनसत्ता का मैं आपको एक एडिटोरियल दे रहा हूं जिसमें खासकर ये बताया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है या प्राकृतिक संकट जो खड़ा हो गया है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर और खासकर कृषि क्षेत्र पर कितना जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बकायदे संसदीय समिति ने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, बाकायदे इस पर अध्ययन कराया गया है। इस एडिटोरियल कमेंट में आपको बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे और मैं चाहूंगा कि आप उन पॉइंट्स को बाकायदे नोट कर लें। अगर आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो मेंस में ये प्रश्न पूछा भी गया है और ये जो कह लीजिए कि टॉपिक है इसे आप ज्योग्राफी का टॉपिक मान करके चलिए, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, इकोनॉमी का टॉपिक नहीं है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और उसका कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब ये आपकी कलाकारी के ऊपर है कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर पाते हैं। दोस्तों चूंकि मेरे पास इतना वक्त इसमें नहीं होता कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकूं, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि यह क्षमता आपके अंदर मौजूद है। कल आपको ध्यान होगा कि मैंने ऑक्सफेम की एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से भारत के केवल 9 जो सबसे बड़े अमीर हैं उनके पास 50% से अधिक संपत्ति है और दुनिया के जो 26 अमीर हैं अगर पूरे दुनिया के कर दी जाए तो उनके पास भी पूरी दुनिया के लगभग 50% संपत्ति है, यानी कि कितनी तेजी के साथ असमानता, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस पर बकायदे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज मैं आपको इसी से संबंधित 2 एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लें। खासकर हिंदुस्तान का जो एडिटोरियल कमेंट है उसमें उन्होंने 2 चीजें बहुत अच्छी बताई हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसी को आधार बनाकर इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए। पहला उन्होंने पॉइंट दिया कि जो थ्योरी चलती थी खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रशिया मूवमेंट के, रशिया में जो आंदोलन हुआ था साम्यवादी आंदोलन, उसके बाद से एक वैचारिक दर्शन आया था मार्क्सवाद का या साम्यवाद का और समाजवाद का। समाजवाद और साम्यवाद का दर्शन मूलतः व्यक्ति की आर्थिक समानता पर ही आधारित था कि किस तरह से हम व्यक्तियों के बीच में आर्थिक समानता स्थापित कर सकें। रशिया के विखंडन के बाद एक दर्शन खत्म हो गया। दूसरी जो बात आई थी वो आई थी ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल का मतलब है बूंद बूंद, है ना, ट्रिकल 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 डाउन यानी कि नीचे थ्योरी, यानी कि बूंद बूंद करके कोई चीज नीचे तक पहुंच रही है। इस थ्योरी का यह कहना था कि अगर समाज के ऊपर के कुछ लोग धनी हो भी जाएंगे तो उनका जो धन है रिस रिस कर टपक टपक कर नीचे तक पहुंचेगा क्योंकि जो ऊपर का वर्ग है ये आर्थिक विकास में सहयोग देगा, राइट। इसमें एडिटोरियल कमेंट में कहा गया है कि ये दोनों थ्योरियां भी अब किनारे कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में विकल्प हमारे सामने क्या रह जाता है कि हम इस दुनिया को संभाल सकेंगे। और इसको लेकर के सच पूछे तो अर्थशास्त्री बहुत चिंतित भी हैं। तो इसमें से भी आप फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा जो आपको ठीक जान पड़े। मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का आज का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, खासकर जो डाटा संरक्षण को लेकर के, डेटा संरक्षण, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। आपको मालूम है कि जो हमारे डेटा है, जो दुनिया भर के डेटा, आप देखिए आधार कार्ड में हमारे डेटा है, बैंक के पास हमारे डेटा है, फेसबुक में है, आपके कितने व्हाट्सएप पे, सब जगह हमारे डेटा अवेलेबल है, ईमेल के जरिए हमारे डेटा लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ये जो डेटा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी प्राइवेसी भी है, तो इनका संरक्षण कैसे हो। अभी हमारे जो ये डेटा है ये विदेशों में संरक्षित होते हैं और वो उनका कुछ भी यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, इसके बारे में ढेर सारी खबरें आप सब पढ़ भी रहे हैं। तो इसको लेकर के एक कमेंट इसमें किया गया है, इसे भी आप जरूर पढ़ें और 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगे, आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर लें। फ्रेंड्स आज के करेंट कंटेंट में आपको जो प्रोवाइड किया गया है योगेंद्र के अलग, जो बहुत हमारे यहां के शिक्षा शास्त्री इकोनॉमिस्ट भी माने जाते हैं, मतलब एक विद्वान व्यक्तियों के तहत हैं और इन्हें मैंने प्रत्यक्ष रूप से सुना भी है, उनका एक आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था उसका हिंदी वर्जन आपके अनुसार प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका टाइटल है विश्व व्यापार संगठन में भारत का बदलता दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दुर्भाग्य से इस तरह के टॉपिक पर हिंदी अखबारों में बहुत कम आपको कभी कभार पढ़ने को मिलेगा, तो मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। राइट फ्रेंड्स, आइए अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं और वो है एंजल टैक्स। इस पर बहुत से आप मित्रों ने ईमेल लिख करके मुझे कहा कि इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, तो आइए सबसे पहले तो हम इस एंजल्स को समझ लेते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि ये टैक्स क्या है, कि एंजल्स क्या है। वैसे तो जब आप डिक्शनरी में पलटेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा एंजल्स का मतलब है देवदूत, देवदूत। एंजल टैक्स को समझने के लिए हम पहले एंजल इन्वेस्टर को समझते हैं। देखिए टैक्स कौन देगा, टैक्स वही व्यक्ति देगा जो कमाई करेगा, राइट। तो एंजल टैक्स का मतलब है कि यह एक ऐसा टैक्स है जो एंजल्स पे लगाया जा रहा है। वेल्थ टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो धन पर लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आय पर लगाया जा रहा है, राइट। तो बट नेचुरल की एंजल टैक्स भी एक ऐसा टैक्स होगा जो एंजल्स पे लगाया जा रहा है। तो ये एंजल्स कौन है, डायरेक्टरी में देखेंगे तो पता लगेगा। देवदूत, तो भैया ये क्या देवदूत पर लगाया जाने वाला टैक्स है। देखिए बेसिक्स इसी तरह से तैयार की जाती है, जो यहां मैं 15 दिन की क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये शब्द आया कहां से, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अमेरिका न्यूयॉर्क जो मैनहट्टन का जो हिस्सा है वहां एक क्षेत्र है ब्रॉडवे थिएटर, एक रास्ता है ब्रॉडवे, वहां एक थिएटर है बहुत बड़ा ब्रॉडवे थिएटर, यानी कि वहां नाटक खेले जाते हैं। तो नाटकों की स्थिति दुनिया में कोई बहुत बेहतर नहीं रही है, रंगमंच से लोग आर्थिक आय नहीं कर पाते थे। भारत में भी आप देखते हैं कि किस तरह से नाटक धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये जो ब्रॉडवे थिएटर है, ब्रॉडवे थिएटर में नाटक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी और उतना पैसा नाटक करने के बाद मिलता नहीं था। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो उस समय जो धनी व्यक्ति होते थे, धनी व्यक्ति, उनके लिए एंजल्स का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो धनी व्यक्ति थे इनमें से कुछ लोग, लोगों को लगता था कि नहीं नाटक जीवित रहने चाहिए, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो ये नाटक की विधा खत्म हो जाएगी। तो वो थिएटर को पैसा देते थे, धन देने लगे, वो थिएटर वालों को धन देने लगे, या यूं कह लीजिए कि उसके संरक्षक बन गए कि ठीक है भैया हम पैसा देते हैं कोई बात नहीं तुम नाटक करो हमें ये वापस मत देना, या यूं कह लीजिए कि अनुदान देने लगे। तो वो देवदूत बनकर आ गए मरते हुए विधा के लिए, एक जो विधा मर रही है उसके लिए वो देवदूत बनकर आ गए ना। तो इन्हें कहा जाने लगा एंजल, एंजल्स, राइट। अब देखिए कि क्या हुआ, अब इसमें आपको दो तीन चीजें बड़ी मजेदार मिलेंगी, फिर आपको एंजल्स इन्वेस्टर पता लग जाएंगे। यानी कि पहला ये तो ये हुआ कि जो एंजल्स होगा वो धनी व्यक्ति होगा, राइट। याद रखिए वो कंपनी नहीं होगी, वो व्यक्ति होगा, इंडिविजुअल होगा। एंजल्स टैक्स, एंजल्स इन्वेस्टर के बारे में समझ लीजिए कि मेरी कंपनी के माध्यम से अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा हूं तो नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप में पैसा लगाऊंगा, तो इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा, वो कहां पैसा लगा रहे थे जो उस समय के एंजल्स थे, थिएटर में, यानी कि जिनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो जो एंजल इन्वेस्टर से ये कहां पैसा लगा रहा, स्टार्टअप में, मैं शुरू करने जा रहा हूं, मेरा कोई आधार नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, तो मुझे कौन पैसा देगा, बैंक भी पैसा नहीं देगा, दूसरे लोग भी पैसा नहीं देंगे, लेकिन ये एंजल आ रहा है, देवदूत आ रहा है और मुझे पैसा दे रहा है कि लो तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, लो तुम बिजनेस करो। तो इसका मतलब हुआ कि जो एंजल इन्वेस्टर है वह स्टार्टअप में पैसा लगाता है। दो तथ्य आपको पता लग गए, नंबर वन वो इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति के तौर पर वो पैसा लगाता है। दूसरा हो गया कि वो स्टार्टअप के लिए ही पैसा लगाता है, क्योंकि स्टार्टअप को बेचारे को दूसरा कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। तीसरी जो बात होती है वो ये होती है कि जब वो पैसा लगाता है किसी कंपनी में तो ऐसा नहीं कि वो ब्याज पर दे रहा है, ब्याज अगर कंपनी फेल हो गई तो बेचारा वो लौटाएगा कहां से, क्योंकि वो तो कोई धनी व्यक्ति है नहीं। तो वो कहता है कि भैया तू ये पैसे ले ले, इस पैसे के बदले में मुझे कुछ शेयर दे दे, कुछ शेयर दे दे, यानी मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगा, यानी कि तुम्हारा नफा होगा तो उसका मैं भागीदार रहूंगा और नुकसान होगा तो तुम चिंता मत करो, वो मेरा भी नुकसान होगा, ताकि स्टार्टअप उसी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सके, नहीं तो ब्याज तो दे नहीं सकता वो उसका। तो दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट हुआ कि वो जो है उसके बदले में जितना पैसा लगाता है, जितना पैसा वह स्टार्टअप को देता है, उसके बदले में या तो वो ओनरशिप इक्विटी ले लेता है, उसका मालिकाना साझेदार बन जाता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर ले सकता है, ले लेता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर और इक्विटी एक ही जैसी होती है, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है मतलब अभी वो डिबेंचर ले रहा है जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बात वही है ओनरशिप। तो दोस्तों यह हुआ एंजल इन्वेस्टर, राइट। अब एंजल इन्वेस्टर के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स कहलाएगा एंजल टैक्स। आज मुझे अपनी बात यहीं मित्रों खत्म करनी पड़ेगी एंजल इन्वेस्टर को समझाने के साथ ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि इस टैक्स का संबंध किससे है। तो आप समझ गए एंजल इन्वेस्टर क्या होता है। स्टार्टअप के लिए वो देवदूत जैसा बनकर के आता है, व्यक्तिगत तौर पर धन लगाता है और उसमें मालिकाना हक रखता है। यह एंजल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है राहुल कुमार सतुवाही बिहार से, मंजू यादव, गौतम कांत ठाकुर, गौरव कोठारी टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से, विकास सिन्हा, लक्ष्मण गुर्जर, हेतराम प्रजापत, सुशील बड़ियासर अजमेर राजस्थान से और आकांक्षा तिवारी बस्तर छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।